खाना बनकर तैयार था। सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान थे। बड़ी ही बेसब्री से खाना परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे। लोग ज्यादा थे, इसीलिए हॉल में जमीन पर ही सबके खाने का इंतजाम किया गया था। एक तरफ पुरुष बैठे थे, दूसरी तरफ महिलाएं। आस पड़ोस की औरतें भी आई थीं और घात लगाए एक अवसर की तलाश में बैठी थीं कि किसी तरह मौका मिले और वे आहाना के जरिए रूपाली जी को नीचा दिखा सके। खुद को सर्वोपरि रखने वाली रूपाली जी ने अपनी बहुओं में जितने नुक्स निकाले थे उन सबका बदला लेना था उन्हें। अन्वय, फलक और अपने कुछ और देवरों के साथ मिलकर आहाना सबको खाना परोसने लगी। एक हाथ का घूंघट निकाले उसे ठीक से कुछ नज़र तक नहीं आ रहा था, जिसे चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर अन्वय ने उसे साइड में खड़ा कर दिया। भाभी, आप यहीं रहिए, आपको खाना बनाना था तो आपने बना लिया, अब सब हम लोग कर देंगे, बस तारीफ आप सुन लीजिएगा। वहीं उसका हमेशा वाला बेफिक्री भरा अंदाज और लबों पर बिखरी सौम्य सी मुस्कान। आहाना ने घूंघट के पीछे से रूपाली जी को देखा, जिनके चेहरे पर सख्त भाव मौजूद थे, और सर झुकाते हुए वहीं खड़ी हो गई। अभी सब बड़े लोग ही खाने बैठे थे। यंगस्टर्स कुछ परोसने में लगे थे तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दादी दादाजी से खाने की शुरुआत हुई और दोनों का मन प्रसन्न हो गया आहाना के हथकों का स्वाद चखकर। दोनों ने तारीफ के साथ उसे शगुन दिया। उसके बाद बाकी सब ने खाना शुरू किया और हर किसी के मुंह से बस तारीफ ही निकली। आहाना की मेहनत सफल हुई थी। किसी को ढूंढने पर भी शिकायत का मौका नहीं मिल रहा था और उसकी इतनी तारीफ सुनकर रूपाली जी भावहीन सी बैठी थीं। खैर, बड़ों का खाना खत्म हुआ, आहाना को उपहारों के साथ ढेरों आशीर्वाद भी मिले। उसके सहज सरल स्वभाव से सभी प्रसन्न थे। आगंतुक खा पीकर अपने घर लौट गए थे। आदमी बाहर जाकर बैठे थे और औरतें अब अपना अपना सामान बांधने जा चुकी थीं। आज उन्हें निकलना था। अब सारे बच्चा पार्टी खाने को बैठे थे, जिनके साथ अक्षय भी था, जो तब से बड़ी ही बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आखिर उसे भी तो अपनी नई नवेली बीवी के हाथों का स्वाद चखने की उत्सुकता थी। भाई देखिए, आज भाभी ने कितना कुछ बनाया है और सबने उनकी कितनी तारीफ की, पर ये सब खाना तो आपके खाने लायक नहीं है। आप तो इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, अब क्या खाएंगे आप? अन्वय ने मौका पाते ही अक्षय को छेड़ दिया। ब्रेड और मक्खन खा लीजिए, या मैं आपके लिए टोस्ट बनाकर ला देती हूँ। फलक ने भी उसका पूरा साथ दिया। आहाना ने अब घूंघट सरकाकर पल्ला सर पर ले लिया था। दोनों की बातें सुनकर वे उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। मन में सवाल तो कई आए, पर वो खामोश ही रही। वहीं अक्षय ने अपने दोनों शैतान भाई बहनों को नाराजगी से घूरा, फिर जबड़े बिंचते हुए मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, आई विल मैनेज, एक दिन हैवी नाश्ता कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है, खा लीजिए, बाद में वर्कआउट करके बैलेंस कर लीजिएगा। इससे आप भाभी के हाथों का बना लजीज खाने का लुत्फ भी उठा लेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और हमारी प्यारी भाभी भी खुश हो जाएंगी। फलक ने तुरंत ही उसकी बात का समर्थन किया, फिर शरारती मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, वैसे भैया सही जा रहे हैं आप, आज नाश्ता भाभी ने बनाया है तो कोई नखरे नहीं, ऐसे कोई आम दिन होता तो सारा घर सर पर उठा लेते। फलक, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, अक्षय ने उसे आंखें दिखाईं। इतने में अन्वय तपाक से बोल पड़ा, हाँ दी, अब आप ऐसे भी नहीं कह सकती भाई को, हमारे भाई तो इतने शरीफ और सीधे हैं कि जो मिलता है चुपचाप खा लेते हैं, क्यों भाई? अन्वय ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए शरारत से दाईं आंख दबाई। अक्षय उसकी शैतानी को समझ पाता उससे पहले ही वो मेंढक जैसे उछलते हुए आहाना के पास पहुंच गया। आपको पता है भाभी, एक बार दी की फरमाइश पर सुबह सुबह आलू के पराठे बने थे और जब नाश्ते की प्लेट भाई भी सामने आई तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुंह बनाकर ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि दी को जाकर उनके लिए पोहा बनाकर लाना पड़ा। इतने डाइट कॉन्शियस हैं हमारे डॉक्टर साहब, पर आपके लिए वो सब नज़रअंदाज करके ये हैवी नाश्ता तक करने को तैयार हैं। आहाना, जो अब तक आंखें बड़ी बड़ी किए कन्फ्यूज सी उन तीनों को देख रही थी, अन्वय की बात सुनकर कुछ मायूसी हो गई। हमें नहीं पता था आप ये सब नहीं खाते, हम कुछ और डना लाते हैं। आहाना ने अपनी बात खत्म ही की थी कि रूपाली जी की बेरुखी भरी आवाज वहां गूंज उठी, बनाओगी क्यों? हमने तो तुम्हें पहले ही अक्षय के लिए अलग से पनीर चीला और चटनी बनाने कहा था, बताया भी था हमने कि अक्षय सुबह सुबह ये तेल में तली हुई चीजें नहीं खाता, सुना नहीं था तुमने, या हमारी बातों की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं इसलिए सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया? मजाक भरा माहौल रूपाली जी के आने पर एकदम से गंभीर हो गया। उनके तीखे शब्द सुनकर सब एकदम से चुप हो गए और एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। आहाना ने जब उनका तन सुना तो आंखों की पुतलियां फैलाए बेयकीनी से उन्हें देखने लगी, जैसे कह रही हूं कि उन्होंने कब बताया ये, उसने तो वो सब बनाया जो उन्होंने कहा, पर मन की बात मन में ही रह गई। उनके सामने जवाब देकर स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहती थी वो, वरना बदतमीजी और सास से जुबान लड़ाने का खिताब भी उसके नाम आ जाता। वो बस आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान सी उन्हें देखती ही रह गई, जबकि रूपाली जी अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़ उतारते हुए आगे कहने लगी, अभी घर में आए एक दिन हुआ नहीं और अभी से तुम्हारी लापरवाही शुरू हो गई है। अपने पति की जरूरतों का भी तुमसे ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। हमारी बातों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कैसे संभालोगी?
माँ बस कीजिए, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है। अक्षय की नाराजगी भरी आवाज उभरी और रूपाली जी के शब्द ठहर गए। वो तो अपनी भड़ास आहाना पर निकाल रही थी। अक्षय को नाराज देखकर उन्हें तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश शुरू कर दी। बेटा तुम हम पर नाराज क्यों हो रहे हो, हम तो तुम्हारे लिए ही कह रहे थे। ये सब कहाँ खाते हो तुम, बहू को ध्यान रखना चाहिए था। अभी से उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते जाएंगे तो आगे और ज्यादा लापरवाह हो जाएंगी। घर की बड़ी बहू है वो, आगे चलकर घर गृहस्थी संभालेगी, पूरे परिवार का ध्यान रखना होगा उन्हें, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसके लिए अभी से उन्हें अनुशासित करना आवश्यक है। आपकी बात ठीक है माँ, पर है तो वो भी इंसान ही, इतना सब कुछ अकेले बनाया है उन्होंने, ध्यान से उतर गया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। अक्षय ने आहाना का समर्थन किया था। ये देखकर अन्वय और फलक दोनों के लबों पर मुस्कान उभर आई थी, जबकि रूपाली जी को ये जरा भी पसंद न आया। वो मन ही मन कुड़कर रह गई, पर अक्षय के आगे उन्होंने और कुछ न कहा। इन सब का सबसे गहरा असर तो आहाना पर पड़ा था। इतने लोगों के सामने रूपाली जी का उसको यूं खरी खोटी सुनाना उसके स्वाभिमान को चोटिल कर गया था। उन बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे और दिल चाह रहा था कि भाग जाए वहां से, पर वो सर झुकाए किसी गुनाहगार की भांति खड़ी थी। रूपाली जी के जाने के बाद भी वहां ऐसा सन्नाटा पसरा था जिसमें पिन भी गिरे तो आवाज गूंज उठे। सब अच्छी खासी मस्ती कर रहे थे, पर रूपाली जी ने आकर सबका मूड बर्बाद कर दिया था। आप बता दीजिए क्या खाएंगे, हम बना लाते हैं, उस सन्नाटे को चीरते हुए आहाना की धीमी सी आवाज आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आहाना, इट्स ओके, आई विल मैनेज, एक दिन की तो बात है, आपने जो बनाया है मैं वही खा लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, बस इसीलिए इतना कुछ कह गई। अक्षय ने शांति व नरमी से आहाना को समझाया। अपनी माँ के सामने बीवी का समर्थन करने के बाद अब बीवी के सामने माँ का पक्ष रख रहा था, आखिर दोनों में तालमेल बिठाना उसी का तो फर्ज था। आहाना ने पलटकर कुछ न कहा और न ही निगाहें उठाकर उसे देखा, बस सर झुकाए सबके साथ साथ उसे भी खाना परोस दिया। यहाँ भी सबने उसके खाने की तारीफ की, जिस पर आहाना फीका सा मुस्कुरा देती, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ छलक रही थी।
भैया, भाभी ने इतने घंटे किचन में झुलस कर इतना सारा स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है, आप खा पीकर ऐसे चुपचाप कहाँ खिसक जा रहे हैं? गिफ्ट तो बनता है भाभी का, तो नेग निकालिए उनका। अक्षय ने खाना खत्म किया ही था कि अन्वय फिर शुरू हो गया। बिगड़े माहौल और मूड को ठीक करने का यही तरीका ढूंढा था उसने। हाँ भैया, भाभी की पहली रसोई थी और उन्होंने इतना मजे का नाश्ता बनाया है, उनकी मेहनत सराहना डिजर्व करती है, गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। फलक ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ भाई, गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए भाभी को। सब कजिन्स ने एक साथ ही सुर से सुर मिलाते हुए राग भैरवी छेड़ा था। अक्षय की खामोश निगाहें आहाना को तकने लगीं, जो अब भी सर झुकाए एकदम खामोश, उदास और मायूस सी खड़ी थी। अक्षय को खामोश देखकर अन्वय ने त्योरियां चढ़ाते हुए तीखी निगाहों से उसे घूरा। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाभी के लिए कोई गिफ्ट लाए ही नहीं? ओ नो भैया, आप इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकते हैं? बेचारी फलक परेशान हो गई और अन्वय ने बेहद दुखी व अफसोस भरे लहजे में आगे कहा, मुझे तो भाभी के लिए बुरा लग रहा है, उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सब बनाया और भैया उनका गिफ्ट लाना ही भूल गए। कितनी केयरलेस हो गए हैं आप भैया, हमें आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अन्वय की नौटंकी शुरू हो चुकी थी, जिसमें बाकी सब भी शामिल हो चुके थे। अक्षय को छेड़ते हुए सब उस पर दबाव बनाने लगे। हाथ धोते हुए वो खड़ा हुआ और कदम आहाना की ओर बढ़ा दिए, जो हर बात से बेखबर, गुमसुम, उदास और मायूसी सर झुकाए खड़ी थी। उसे आहाना की ओर बढ़ते देखकर सब एकदम से शांत हो गए और उत्सुकता भरी निगाहों से बड़ी ही दिलचस्पी से उन्हें देखने लगे। अक्षय के कदम आहाना के ठीक सामने आकर ठहरे। उसने आहाना की हथेली थामी, तब कहीं जाकर आहाना की निगाहें उसकी ओर उठीं। उन बड़ी बड़ी आंखों में नमी अब भी बाकी थी और उस नमी में लिपटी थी एक शिकायत, एक सवाल, एक उदासी। अक्षय ने दूसरी हथेली अपने पॉकेट में डाली और अगले ही पल एक खूबसूरत सी रिंग आहाना की उंगली की शोभा बढ़ाने लगी थी। खाना बहुत अच्छा बना था, लबों पर दिलकश मुस्कान सजाते हुए अक्षय ने तारीफ की और साथ ही आंखों से उसे कुछ इशारा भी किया, जिसे समझते हुए आहाना ने सर हिला गया। इतने में बाकी सब सीटियां बजाने लगे, हूटिंग करने लगे। अक्षय ने अपनी मुस्कान समेटी और वहां से जाते हुए बोला, फलक, अपनी भाभी को खाना खिला देना। जी भैया, फलक ने तुरंत ही हामी भरी और दौड़ते हुए आहाना के पास पहुंच गई। उसकी हथेली पकड़े उसकी रिंग को देखने लगी। यहाँ से जाते हुए अक्षय के चेहरे के भाव बदल गए थे और आंखों के आगे आहाना की वो नम आंखें उभर आई थीं, जिनमें मौजूद शिकायत वो पढ़ चुका था। कमिंग सून।